आप सुनत हुआ सिनेमाए भोजपुरी रेड एफएम पॉडकास्ट पर शशांक के साथ है।
सनीमाए भोजपुरी अब तक आप 3 एपिसोड सुन ले हुआ और मनोज तिवारी जी के साथ शुरुआत भइल, अक्षरा सिंह से बात भइल, ओकरे बाद गुंजन पंत जी का नाम आइल और अब चौथा नाम जो है वो आइल बा मुंबई के वसई इलाके से। जी हाँ, पाखी हेगड़े जी से आज बातचीत हुई सनीमाए भोजपुरी में। पाखी हेगड़े, इनाम से सब जने वाकिफ हुआ हाँ। पाखी जी बतावा कि अब तक का सफर कैसन रहा आपके?
मुझे लगता है कि सच्ची ईमानदारी से जो भी सफर आप तय करेंगे वो कभी आसान नहीं होता। उसमें आपको अड़चने आनी है और मुझे लगता है जब अड़चनों का सामना करते हुए आप काम करते हो तो काम करने का मजा भी दुगना ही होता है। मुझे लगता है कि संघर्ष जीवन में हमेशा होता है, उससे डरना नहीं चाहिए। आप अपना नेकी से अपना कर्म करिए और मुझे लगता है डर के आगे जीत है। जब मैंने कैमरा फेस किया था मैं वहां से भाग गई थी ये सोच के कि ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत डर गई थी कि किस तरीके से मैं कैमरा फेस करूंगी, किस तरीके से मैं बात कर पाऊंगी। मतलब मन एकदम जैसे नहीं टूट गया था। फिर जाके मैंने बैठ के सोचा कि मुझे ये करना ही है नो मैटर व्हाट। तो वो डर जब आप ओवरकम करते हैं ना किसी चीज का, तो उसके बाद का सफर जो होता है वो बहुत सुहाना होता है। तो मुझे लगता है वो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आप अपने मन के साथ अपने तन्मयता के साथ वो एक डिसीजन कर ले कि मुझे जो कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है। नो डाउट बहुत सारी मिस्टेक्स भी की, बहुत सारा समय देके सीखना भी पड़ा, लेकिन मुझे यही था कि अगर मैं 100% दे सकती हूँ मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं 200% दूंगी। जो भी करूंगी वो टैलेंट के दम पे करूंगी। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, इट विल बी अ लॉन्ग वे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप खो देंगे लेकिन आप इसको जरूर हासिल करके रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका दृढ़ स्वभाव ये आपके निश्चय को और पक्का बनाता है। और नो डाउट जब इंसान इस तन्मयता के साथ में करता है तो आपको सक्सेस हासिल होनी है, ये मेरा मानना है।
काफी स्ट्रगल करे के पड़ा तो आपकी जिंदगी का स्ट्रगल कैसे रहा?
पारिवारिक स्तर पर मैंने संघर्ष फेस किया है ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नो डाउट मेरी फैमिली भी उतनी ही इंट्रोवर्ट और हमारी फैमिली में भी उसी तरह की सोच है कि लड़कियों को ऐसी फील्ड में जाके कहीं ना कहीं दूर से अगर आप देखते हैं तो ग्लैमरस फील्ड है और इस ग्लैमरस फील्ड में सबसे ज्यादा कटाक्ष भी उठते हैं। इस कटाक्ष के पीछे कई सारी कारण होते हैं जो कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक सही नहीं भी है। ये हर एक के परसेप्शन का और सोच का खेला है। जब आप अपने परिवार के सम्मति के साथ फील्ड में आते हो आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आपके संघर्ष में काफी आसानी होती है, क्योंकि वो आप कोई ऑफिस का काम कीजिए तो उसमें भी आपको संघर्ष करना ही है, किसी डॉक्टर पर भी है तो भी वहाँ पर भी आपको हर फील्ड में आपको कॉम्पिटिशन मिलेगी। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपके टैलेंट को देखा जाएगा, क्योंकि हर फील्ड की सिर्फ पहचान एक ही होती है कि आप कितने सक्षम हैं, उसके अलावा आपका लक कितना साथ दे रहा है, राइट जगह पे आप राइट टाइम पे है या नहीं मायने रखती है। नो डाउट मुझे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली जिनमें कई अपॉर्चुनिटीज मुझे समझ में नहीं आई, कई अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए नहीं बनी थी। ऐसे करते करते मुझे अपॉर्चुनिटीज में जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली मिस इंडिया 250 गर्ल्स का ऑडिशन हुआ था उसमें, उसके बाद में उनको मेरा किरदार समझ में आया, वहाँ से वो जर्नी शुरुआत हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बॉलीवुड की बड़ी फिल्म करनी है। आई वॉज वेरी हैप्पी विथ अ स्मॉल रोल, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर आप जहाँ भी है आप वहाँ पे इतना अच्छा कर जाओ जो किसी ने ना किया हो, अल्टीमेटली उसकी खुशबू सब जगह पे फैलने लगती है। और वही मेरे साथ हुआ। जब मैंने मिस इंडिया किया तो वो शो नंबर 1 पे था, उस शो से मुझे काफी ख्याति मिली, आगे अलग अलग जगहों से काम आने लग गया। जब काम आने लग गया तो मैं उसमें थोड़ी सिलेक्टिव नो डाउट जाता थी, मुझे फिल्मों में काम करना नहीं था। मुझे लगता था कि वहाँ पे एक्सपोजर है, वहाँ पे नाच गाना करना होता है, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे। मैं भी उसी दायरे में और उसी वातावरण में पली बड़ी हूँ तो लोगों का वो सोच को मैं बहुत सोच के चलती थी कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। लेकिन जब सिनेमा की ऑफर आई और पहली फिल्म जो मैंने की थी बैरी पिया, उसमें सरस्वती चंद्र का मतलब सरस्वती चंद्र मूवी अगर आपने हिंदी में देखी है तो जिस तरीके नूतन जी का किरदार था उन्होंने मुझे काफी कन्विंस किया और फाइनली मैंने मान लिया मैं उस फिल्म को करूंगी। फिल्म करते वक्त नो डाउट एक सीरियल का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस समझ में आने लगे इसमें किस तरीके के सीन होते हैं कैसे होते हैं। सीरियल होती है वो एक बार आप देखते हैं उसके बाद में आप बार बार उसको रिपीटेड नहीं देखते हैं, लेकिन जहां तक फिल्म का सवाल है वो एक बार बनती है और 100 बार देखी जाती है। उसमें पैशन और सर्वोत्कर्ष पे होता है, कई नॉवेल्टीज मुझे सीखने मिली। जब मैं सीरियल कर रही थी तब उस वक्त मुझे अंदाजा ये भी हो रहा था हमारे पहनावा हमारा कपड़ा हमारा लुक, मुझे वहां पासी को नहीं दर्शाना है, मुझे दर्शाना है जो एक डायरेक्टर का विजन है। तो डायरेक्टर के उस किरदार में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उस किरदार में अपने आप को ढालना है, ना कि मुझे पाखी को बनाना है। मैंने अपने उस एक्टिंग के जो एबिलिटी को रखना और पहचानना शुरू किया। वो स्टेज से जब मैं आगे गई तब मुझे लगा कि कपड़े और ये सब कितने विलियम स्थान पर है, व्हाट मैटर्स इज द स्क्रिप्ट, मैं कितना अच्छा करती हूँ, मैं वो किरदार कैसे निभाती हूँ, उस किरदार में मेरा जो रोल है उससे लोगों का कितना प्यार जुड़ा होगा। तो जब वो परिवार जैसी फिल्में रही है, मैंने एक घर में जो बहू होती है उस बहू का किरदार निभाया है, शिवा में एक नटखट लड़की कैसे होती है, शावला में एक लड़की जो पढ़ी लिखी है और साथ में एक जब हादसा होता है तो उसी तरीके से अपने परिवार के सम्मान को बचाते हुए लेकिन अपने औरत होने के सम्मान को भी रखते हुए उस तरीके से वो निभाती है। तो ब्यूटीफुल मोमेंट उस पूरे जर्नी में आते गए। धीरे धीरे मेरा वो जो थॉट प्रोसेस था सिनेमा की तरफ, एक ग्लैमरस फील है, वो कम्प्लीटली बदल गया। यू हैव टू ईट ड्रिंक एंड स्लीप सिनेमा, यू हैव टू फॉल इन लव विद इट, तभी जाके जब उतना उस किरदार को आप आत्मसात करेंगे तो जाके आपकी फिल्म अच्छी बनेगी। और वो सिर्फ एक किरदार के लिए, हर किरदार के लिए लागू होता है।
ये बतावा कि कब लगल कि जौनो स्ट्रगल होत बा जिंदगी में वो सही दिशा में जात बा।
आप बिलीव नहीं करोगे, आई यूज टू गेट कॉल्स फ्रॉम चंडीगढ़ तरफ से भी कॉल रहे और लोग मतलब जो मेरी फैंस होती थी ये कहती थी कि हम लोग अपनी लाइट चली जाती है तो लाइट की एनर्जी को बचा के रखे, जनरेटर की एनर्जी को बचा के रखे तो ताकि हम आपका शो देखें। तो आई कुड मेक आउट कि लोग किस लिए जुड़े हुए थे। आप मुझे जितना नचखट सिनेमा में देखे हो ना, बहुत ही शांत दो चोटी पहनने वाली लड़की, और नो डाउट उसके रीजन काफी सारे थे। हमारे पापा की डेथ हुई थी 4th स्टैंडर्ड में जब हम थे तभी, वो एक प्यार जो उनसे अति प्रेम था वो मैंने बहुत मिस किया मेरे चाइल्डहुड में। हमेशा उनको याद करते हुए उनको मैं कैसे अगर इम्प्रेस करती, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे साथ में वो है और मैं उनको प्रूव करना चाहती हूँ, मैं जो भी करूंगी मैं 200% करूंगी। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी जितनी पॉजिटिविटी और एनर्जी मेरी होती थी मैं जो भी करती थी, वो पढ़ाई हो तो पढ़ाई में डालती थी। आई वॉज अ रैंकर स्टूडेंट, हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, कॉलेज में रैंकर रही हूँ और डांस कॉम्पिटिशन में मैं हमेशा अव्वल रही हूँ। अगर रनिंग करती थी तो मुझे पीटी उषा कहा जाता था उस वक्त, तो रनिंग में आई वॉज वेरी गुड। मैंने कोशिश यही की है कि जो भी काम हाथ में लूँ भले वो थोड़ा करूँ लेकिन वो पूरी ईमानदारी से करूँ। मुझे लगता है जब हम इतनी ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो सक्सेस हमको मिलना ही है। उस दिशा में हमको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। मैं मानती हूँ कि आप अपनी सोच अगर उस डायरेक्शन में रखें, उस काम को सोचे कि ये काम मेरा होने वाला है और हो रहा है, पूरी कायनात जुट जाती है आपके उस काम को पूरा करने के लिए, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। मेरे जीवन के सिद्धांत बड़े सिंपल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा लड़कियों के अच्छे के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कई अभावों में अपने जीवन को जिया, तो मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को हम अपॉर्चुनिटीज दें तो वो बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकती हैं। आई ट्राई टू डू माई बिट ऑलवेज टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। मुझे कई सारे सवाल कॉलेज की कई बच्चियां पूछती हैं, तो आई गो अटेंड फंक्शंस, आई एक्सप्लेन देम कि अगर आपको फिल्म या एंटरटेनमेंट फील्ड में आना है किस तरह से कॉम्पिटिशन गो थ्रू करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपके गोल्स अगर आप सही से रखोगे नो डाउट वक्त जरूर लगेगा हर चीज को पाने में। आपका गोल अगर सही दिशा में सही तरीके से सही मेहनत के साथ अगर जा रहा है तो आपको हर चीज वो हासिल हो सकती है। वो इसी फील्ड के लिए नहीं है, वो किसी भी फील्ड के लिए हो सकता है।
ये बहुत कम लोग के पता बा पाखी जी कि आप मुंबई के वसई जगह से हैं और कन्नड़ आपका मदर टंग बा, तब भोजपुरी का सीखे के पड़ल?
भोजपुरी को मैं मानती हूँ अपभ्रंश हिंदी, और मेरी हिंदी काफी अच्छी रही है तो वो जरूर मुझे हेल्प की है भोजपुरी भाषा उतनी मुझे डिफिकल्ट नहीं लगी। भोजपुरी का जो टोन है वो पकड़ने में और जब शब्दों का अपभ्रष्ट तरीके से उच्चारण करना है वो करने में मुझे बड़ी दिक्कत आई। मैं बोलती हूँ बड़ी क्लियर हिंदी, आप भोजपुरी में बात करेंगे तो कई वर्ड ऐसे होते ना काहो काहोला, तो अब बोलते हो उसको मोड़ के बोलते हो, बोलना मुझसे बड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन मुझे लैंग्वेज सीखना बड़ा पसंद है, मैंने कई मेरे कोस्टार्स को मनाया था कि आप मुझे भोजपुरी सिखाइए, हम आपको हिंदी सिखा देंगे या इंग्लिश सिखा देंगे, तो उस हिसाब से वो चैलेंजेस मैं भी सीख जाऊंगी जल्दी से। तो मैं बहुत इंटरेक्शन करती थी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था मुझे और काफी अच्छी भोजपुरी अब बोली लेती हूँ मैं।
जे इंडस्ट्री से दूर बा, वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना जाने ला, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए आप।
हम तो ये कह के चांद में भी दाग खुला, जहाँ चार लोग अच्छा रहे ले चार लोग बुरा भी रहे ले, लेकिन आपके हिम्मत होके के चाहिए, जब आप साज बानी तो आप ओके आराम से पार कर सके। मैं जब भी मतलब इंटरव्यूज या करते वक्त या कहीं भी बिहार या यूपी में जाती हूँ, हमेशा वो लोग तारीफ करते कि अरे आप बड़ा प्यारा बोलती है भोजपुरी।
जब वो भोजपुरी या फिर कौनो इंडस्ट्री का नाम आवला, भले वो बॉलीवुड रहे या भोजपुरी इंडस्ट्री रहे, कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ल रहा हमेशा, तो कौने टाइप का कॉन्ट्रोवर्सी आपके अगल बगल रहा?
कॉन्ट्रोवर्सी या बातें ऐसी होती है जहाँ पे आप जुड़ना भी नहीं चाहते। जीवन में इतना पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहती हूँ। नो डाउट आप इंसान हैं, आप अच्छे इंसानों को मिलते हैं और बुरे इंसानों को भी मिलते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन क्यों किस लिए आपके साथ में क्या करना चाहता है, आप सीखते जाते हैं। आपका जब मन साफ है तो कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी कोई भी क्रिएट करे, मुझे ये पता है आपके मन में जब छल कपट नहीं है तो आप अपनी वक्तव्य से बात करके उसको जब भी आप कन्फ्रंट करेंगे उसको आपकी आंख की सच्चाई, दिल में जो आपकी प्योरिटी है वो नजर आती है और फाइनली सच सामने आता है। बिलीव करती हूँ इस चीज को और मैंने हमेशा हर कॉन्ट्रोवर्सी या हर कुछ अगर किसी ने क्लियर करने की कोशिश भी की है, मैंने उसका सामना किया है, मैंने उसको फेस किया है ना, सच्चाई का प्रमाण उनको दिया है। तो मैं बहुत इस मामले में कॉन्फिडेंट इसलिए हो पा रही हूँ कि मैं अंदर से वो साफ रही हूँ। अगर मेरे मन में कुछ छल कपट होता तो वो चेहरे पे 100% दिख जाता। तो मैं बिलीव करती हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहेंगी और कॉन्ट्रोवर्सीज जहाँ पे अच्छे या बुरे लोग होंगे वो करते रहेंगे। आप क्या हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग एंड आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एट टाइम्स कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी अगर आप चर्चा में है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप सफल हुए हैं।
अच्छा, कबो अगर कोई आपसे पूछला तो आप कैसे गाइड करें इन सबके?
मुझे यही बहुत लोगों को गाइड करना होता है कि आपको फॉर्म अपने डिसीजन करने हैं, आप क्या चाहते हैं। जब आपको पता होता है कि मुझे काम करना है, मेरे टैलेंट पे काम करना है, आपको यहाँ कोई फोर्स नहीं करेगा। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई आके आपको जबरदस्ती आपके साथ में कर सकता है, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत का डर होता है। लेकिन आप अपना संयम भी ना खोए और अपने टैलेंट पे भरोसा रखें। जब ये होगा तो अल्टीमेटली मेड बी अ स्लो रेस, लेकिन आपकी वो रेस स्टेडी होगी और नो डाउट आप अपना 200% काम में देंगे, आप कहीं ना कहीं अच्छी जरूर अपने आप को करते हुए पाएंगे। वो सिर्फ फिल्म लाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बोलती हूँ वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में लड़कियों को हमेशा ये प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करना पड़ता है। आई हैव सीन मेड बी एनी फील्ड, बी डॉक्टर्स, मेड बी एनी ऑफिस, मेड बी कॉर्पोरेट सेक्टर, हर जगह पे लड़कियों को स्पेशली थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन या मैनिपुलेशन फेस करना पड़ता है और बहुतों ने किया हुआ है। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब आपको पता है कि आपका रास्ता ये है और आप टैलेंटेड है, आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि नो डाउट यू हैव टू रीच समवेयर। इट विल बी डिफिकल्ट पाथ, इट विल बी स्लो पाथ, बट इफ यू हैव कन्विक्शन आप 100% से अचीव करेंगे, ये मैं मानती हूँ।
भोजपुरी गानों के बारे में बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, अक्सर उसमें फुहड़ता की बात होती है, तो भोजपुरी गानों के बारे में क्या सोच है आपकी?
मुझे लगता है बहुत सीमित इंडस्ट्री है, बहुत ही कम लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में सक्षम रहे हैं। और इंडस्ट्री का ये दुर्भाग्य है कि अभी इंडस्ट्री उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई है यूनाइटेडली, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी अलग फील्ड हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ में अच्छे से बात करे तो ही काम होता है, लेकिन आपका साहित्यिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज एवरी टाइम मैं देख रही हूँ कि पुअर होते जा रहा है। इट्स मोर ऑफ बंडलिंग अप कि ये बजट में है तो इसको समेटिए ये बजट में। मुझे उस चीज से बड़ी तकलीफ जरूर है। रियली पॉइंटलेस टू डिस्कस अबाउट 1%, इट इज अ होल टीम वर्क। पहले मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली हम कोशिश करते थे बहुत अच्छी फिल्में बनाने की, जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका एक हो सकता है वो थिएट्रिकल कलेक्शंस के वजह से हो या और कोई प्रॉब्लम जो आ रही है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं बांध दिया गया ऐसा लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस जो पहले दिखाई देता था, प्रोग्रेस उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
सही बात, और डबल मीनिंग भी बहुत होला।
क्या प्रोमिनेंस जैसे हिंदी फिल्मों में भी ए ग्रेड की फिल्में बनती है, साउथ में भी बनती होंगी, यहाँ पे भी बनती है, जो गाने बनते हैं उसमें कुछ दुय्यम अर्थी शब्दों का इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दो अच्छी फिल्में बनी, उन फिल्मों को सराहा नहीं गया, और जो गंदी फिल्में बनी उसको हाईलाइट किया गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भोजपुरी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं बनी है। कई फिल्में उठा के देख लीजिएगा जो जिसमें कभी कोई आपको एक्सपोजर, कभी कोई गंदगी नजर नहीं आएगी, कोई अश्लील बातें नजर नहीं आएंगी, और बहुत बड़ी हिट फिल्में रही हैं वो। लेकिन हाईलाइट इन चीजों को होने के वजह से और भी उसका स्थान कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे गिर गया है ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, आजकल लोग फिटनेस के लेके, अपन फिगर के लेके, अपन पर्सनालिटी के लेके काफी सोशल हैं, तब भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या एक्ट्रेस फिगर कॉन्शियस ना हो इनका?
मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एक्ट्रेसेस पतली या पतली ना हो, क्योंकि जब मैंने भी फिल्म में पदार्पण किया था तो ये एक माइंडसेट लोगों का, जैसे आप दिखाते हो वैसे दिखता है। जब मैंने अपनी फिल्म पहली की थी निरहुआ रिक्शा वाला जो प्रोमिनेंट है, मैं पतली ही थी और लोगों का कहीं पे उस पर ध्यान भी नहीं गया था कि मतलब हीरोइन ऐसी होनी है या वैसी होनी है। उनका वो कहानी पर ध्यान था, वो फ्लो पे ध्यान था, फिल्म के हर किरदार पे ध्यान था, उसका हर किरदार हीरो था। सिर्फ हीरो और हीरोइन हीरो नहीं थे, आप देखिए कॉमेडी कैरेक्टर विलन भी हीरो थे और छोटा बच्चे का किरदार था वो भी हीरो था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल बनी थी। तो पिक्चरें अच्छी बनना और पिक्चरों का अच्छा होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली उनका साउंड हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हीरोइन आपकी परफॉर्मेंस से जानी जाती है और वो लोगों के मन में कैसे बसती है या लोगों को अपने मुंह में कैसे बांधती है ये इम्पोर्टेंट होता है। उसकी अदाएं और उसका फेस क्या प्रेडिक्ट करता है, वो पर्टिकुलरली कोई भी एक आज हिंदी इंडस्ट्री में आप देखिए, हम श्रीदेव जी को मानते हैं, हम माधुरी दीक्षित जी को मानते हैं, एक्सप्रेशंस की वो क्वीन रही हैं, उनकी अदाएं और उनकी बातें मधुबाला जी हुई, आप उनकी अदायगी को आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपका परफॉर्मेंस आता है वहाँ पे अल्टीमेटली मेरी हर फिल्म से मुझे यही रिस्पॉन्स मिला है लोगों का कि आप जब भी परफॉर्म करती हैं, आप एक्टिंग कर रही हैं लगता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ध्यान बॉडी से हट के उनका मेरे चेहरे पे या एक्सप्रेशन पे रहा है ज्यादा, इसीलिए वो ये बात कह सकते हैं।
पाकी हेगड़े जी से बात होत बा। पाकी जी, कोनो यादगार टाइम कॉलेज डेज का अगर आप हमसे शेयर करना चाहती हैं?
मुझे याद है बचपन में मतलब टीवाई में या ऐसे कुछ कहूंगी मैं, और हम लोग एक सेट पे गए थे चांद का टुकड़ा। तो एक जर्नलिस्ट थे जिनके साथ में हम थे, तभी बहुत शौक था, श्रीदेवी जी को बड़ा प्यार करती थी उनके, तो मैंने देखा सामने वो मतलब आ रही हैं और हम लोगों को चेयर दी गई थी, तो हम बैठ गए थे उस चेयर पे। तो बैठे तो जैसे नजदीक आए तो देखा उन्होंने और बोला कि अरे वाह, तो हंस दी, तो मुझे समझ नहीं आया, थोड़ी कॉन्शियस हो गई, मैं फट से उठ के खड़ी हो गई, मुझे क्या हो गया। तो मुझे पता चला वो जो चेयर थी, वो श्रीदेवी की चेयर थी जिसमें जर्नलिस्ट थे हमारे इंडस्ट्री के, तो उनको उन्होंने कहा कि ज्योति जी नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि ज्योति जी ये लड़की बहुत जल्दी उड़ान भरना चाह रही है, मेरी ही चेयर मतलब हथियार।
ये सवाल हम सबसे पूछते हैं कि क्या पॉलिटिक्स में आवे का मौका मिली, तक आप पॉलिटिक्स में आवे का कौनो प्लान बागा?
मुझे लगता है कि नेता और अभिनेता इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप किसी चीज का नेतृत्व करते हैं तो आपको नेता कहलाया जाता है। अभिनेता वो होता है कि आप उस पूरी कहानी को अपने शोल्डर पर लेके चलते हो। अगर अभिनेता अच्छा हो तो फिल्म हिट होती है, उसी तरीके से अगर नेता अच्छा हो तो उसका वो पूरा प्रांत प्राउड फील करता है उसके ऊपर। मैं कभी चाहूंगी नहीं कि पॉलिटिक्स से मैं जुड़ जाऊं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स पता नहीं है। लेकिन जब मैं लोगों के रिएक्शंस देखती हूँ कि कोई भी क्षेत्र में जाती, मुझे अच्छा लगता है लोगों से जुड़ना, काम करना, गाइड करना, बाढ़ के वक्त जाकर वहां पे मदद करना। मुझे मैं किसी को दर्शाने के लिए नहीं करती, लेकिन अब जब मैं कर रही हूँ तो कई बार ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं, इस तरीके से आप अगर हमारे साथ में जुड़ेंगे तो हमें बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। ताकि मैं कुछ ना कुछ तो समाज सेवा, ऑलवेज ही मेरे अंदर फीलिंग रही है कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू गाइड पीपल। मैं अपनी लाइफ की पूरी जर्नी टीचर रही हूँ, तो मैंने टीचर जब रही हूँ तो मैंने बच्चों को गाइड ही किया है। मुझे कुछ भी होती है घटना तो मुझे बड़ा किसी बात से सेव भी करता है कि मुझे जाके ये करना चाहिए, मुझे ये मन करता है। अभी कोरोना कोविड के टाइम से बहुत मन करता है कि लोगों को गांव में अभी सबसे बड़ा जो गाइडेंस चाहिए वो ये चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उनको अपने अपनी केयर कैसे लेना है, उनके घर में जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत बड़ी महामारी है, इसको इतना इजीली हम लोग एस्केप नहीं करने वाले हैं। तो जब तक प्रिकॉशन या केयर नहीं ले पाएंगे हम वो कभी कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है इन शॉर्ट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं, पॉलिटिक्स जो है ये सब्जेक्ट अभी तक मुझे उतना सही से समझ में नहीं आया कि ये क्या है। लोगों के लिए, लोगों के अगर ये मुझे कुछ करना है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन टू डू इट। क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरी घर की ड्यूटी करने के बाद भी मुझे कोई ड्यूटी करनी होगी तो मैं वो सोसाइटी के जरूर करूंगी, क्योंकि हम नागरिक हैं, हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। महिला शोषण के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मैं हमेशा कुछ सोशल मैसेज जरूर देती हूँ, क्योंकि एक तरह की जागरूकता है। हम लोगों को लोग फॉलो करते हैं तो हमेशा लोग हमको आइडल मानते हैं, तो जब हम अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। कई सारी चीजें हैं जो हम शिक्षा पाए हैं तो हमको पता है, कई सारे लोगों में वो अभी तक जानकारी सही से नहीं है।
अक्सर जब एक लंबा टाइम बीत जाला इंडस्ट्री में तो लोग केहू से नाम जोड़लन, तका आपो के साथ ऐसा भइल कि केहू के साथ नाम जोड़ल गया आपका?
ऑफ कोर्स, जैसे मैंने ये एक बात हमेशा सीखी थी कि अगर कोई कमजोर हो तो उसका हमेशा उसको हमेशा सप्रेस किया जाता है। मैं सिंगल पेरेंट रही हूँ, मैंने जब डिसीजन लिया कि मुझे अपने टैलेंट पे कुछ काम करना है, क्योंकि मम्मी ने अपना कर्तव्य को पूरा किया था। लेकिन लाइफ में आप सब कुछ जो चाहते हो वो नहीं होता है। किन अभावों की वजह से जब आपको कुछ डिसीजन हार्श लेने पड़ते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आगे की स्ट्रगल आपकी अपनी बनती है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने परिवार को उसमें और तकलीफ दूं, मुझे चाहिए था कि मैं खुद से कुछ करूं। और मुझे लगा कि टैलेंट के दम पर ये एक फील्ड जहां पे मैं कुछ कर सकती हूं। नो डाउट हम भी इंट्रोवर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कई सारे रेस्ट्रिक्शन दायरे मम्मी की तरफ से भी रहे हैं, काम करेंगे तो ऐसा ही करेंगे वरना आप मत ही करिए। तो नो डाउट एक माइंडसेट के साथ में इंसान निकलता है, काम ढूंढता है, उसमें आपको पता चलता है कई सारी परेशानियां आपको ये करनी पड़ सकती है, फेस करनी पड़ सकती। हम खुद चाह रहे थे कि हमारा एडवांटेज किसी भी चीज पे नहीं लिया जाए, और इसीलिए मैंने हमेशा मेरा स्टेटस कभी किसी से किसी के साथ में डिस्कस नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग होना रहना चाहिए। जब आप एक व्यक्ति हैं तो आपको अपने टैलेंट के लिए जाना जाए, ना कि आपको दया में कोई काम मिले। तो मैंने अपना काम जितना भी पाया है वो अपने टैलेंट से पाया है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि लोग मुझे जानते हैं मेरी वजह से। नो डाउट मेरा भी नाम जोड़ा गया था। मुझे सबसे पहले बहुत तकलीफ रही जब मैं उनके परिवार से जुड़ी, और परिवार से जुड़ के उनके पूरे परिवार ने मुझे अपनाया अच्छे से। मुझे लगा कि लोगों का बोलना मायने नहीं रखता है, आपकी सोच मायने रखती है। आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, और आप कभी किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, तो चीजें अपने आप सुलझती जाती हैं। आप अपना फोकस सही रखिए काम में, और वही मैंने किया। और मुझे लगता है कि उसके बाद में मुझे दिक्कतों का उतना सामना करना नहीं पड़ा, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इवन मेरे कोस्टार को भी उतना ही प्यार मिला, हमारी जोड़ी भी काफी हिट रही, परिवार भी हमेशा खुश रहे हमारे काम से, और कहीं भी हमारा नाम गलत तरीके से नहीं लिया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें आपके अच्छे आपकी नीयत बड़ी साफ होनी जरूरी होती है। वो मुझे लगता है कि आई एम I'm blessed to have good fans, I'm blessed to have good family जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे सभी co-stars जितने भी रहे वो काफी अच्छे रहे, जिसमें सबसे ज्यादा फिल्में मेरी दिनेश जी के साथ में रहे, तो उनके परिवार के साथ में बड़े अच्छे संबंध रहे. मेड बी हिज वाइफ, मेड बी हिज मदर, मेड बी हिज ब्रदर, उनके चाचा भी कभी जी थे, वो भी मुझसे बड़े क्लोज है. तो एक परिवार की तरह हम लोग रहे. तो जब आप एक एज अ बॉन्ड की तरह आप जब काम करते हो, वो पॉजिटिविटी में टर्न होता है.
पाकी हेगड़े जी, ये बताएं कि कौनो ड्रीम रोल बचल बका?
आई एम नॉट येट फिल्ड विद माई ड्रीम्स, देयर आर सो मेनी ऑफ देम. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी तक करनी है, और मैं वो जरूर करूंगी. नो डाउट मुझे मुझे सिनेमा इज पैशन, तो मुझे वो करते करते ही मुझे मरना पसंद होगा. और उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि देर इज समथिंग अबाउट मी विच इज डिफरेंट. मैं वो करते रहूंगी, और हमेशा मैं अपने टैलेंट के दम पे पहचानी जाऊँ, ये मेरी इच्छा है. मैं उसी लिए जानी जाऊँ कि मैं अच्छी आर्टिस्ट रही हूँ. और नो डाउट उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में, बहुत लोगों की मदद करना चाहती हूँ. जैसे मैं यहाँ तक का सफर तय की हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मार्गदर्शक बनूं दूसरों के लिए भी. काम इस तरीके से कर सकते हैं, और पूरी पॉजिटिविटी और फुल एनर्जी के साथ में अपने आप को इस काम में डाल के अपना नाम बना सकते हैं. कोई जरूरत नहीं है जो लोग बोलते हैं कि ओके इसी तरीके से काम होता है, उस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मानना नहीं है.
ढेर सारी फिल्म, बहुत लंबा करियर भइल बाकी हेगड़े जी आपका. कोनो डायलॉग जेकरे साथ कोई चीज जुड़ल हो, कोई फेवरेट डायलॉग ओकरे बारे में कुछ बताएं?
मेरा डायलॉग बहुत लंबा नहीं है, कि लोगों को बड़ा पसंद है. मेरा वा रिक्शा वाला फिल्म में मेरा एक डायलॉग रहा है कि जब भी ये लड़की बड़ी शहरी लड़की रही है, और जब गाँव में आती है कि अपनी एक अदा रही है. ये मैंने कहाँ से ली है वो भी बताना चाहूंगी जाते जाते. मैं दिव्या भारती जी की बड़ी फैन रही हूँ. उनकी मूवीज जब भी देखती थी तो मुझे उनकी अदा बड़ी पसंद आती थी, बड़ी क्यूट लगती थी मुझे. उनकी दीवाना फिल्म में एक हरकत रही है हमेशा, मार डालूंगी, ऐसे कुछ वो पंच लाइन जरूर देती थी. उसी टाइप की पंच लाइन मैं चाहती थी कि मैं फिल्म में रखूं. निरवा रिक्शा वाला के राइटर संतोष मिश्रा जी को मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा डायलॉग दीजिए जो मैं हमेशा यूज कर सकती हूँ फिल्म में. तो उन्होंने मुझे एक डायलॉग दिया था, जब भी कोई कुछ भी हरकत करे सामने और काटना हो, कट करना हो, तो मैं उसको बोलती ढेरना ना तो उड़ा दे. ये जो डायलॉग है ये मैं हमेशा फिल्म में यूज करती थी, और बहुत लोगों को पसंद आता था. कहीं ना कहीं मेरे साथ में वो डायलॉग हमेशा चला है. मेरी थ्रू आउट जर्नी जो रही है भोजपुरी में, उसमें लोग मुझे उस डायलॉग से पहचानते हैं.
थैंक यू सो मच पाकी जी, आपसे बात करके हम सबके बहुत अच्छा लगल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.
इट वॉज सच अ प्लेजर. थैंक यू.
कैसा लागल ये एपिसोड बतावे खातिर भेजा अपन प्रतिक्रिया और सुझाव podcast@redfm.in पर. साथे फॉलो करा Red FM Podcast Instagram पर.